Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं मार्केट मंत्र के साथ। यहाँ हम बात करेंगे आर्थिक जगत की, चर्चा करेंगे आर्थिक खबरों पर। चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
धन्यवाद प्राची।
चर्चा शुरू करेंगे अनुभव, मगर उससे पहले हेडलाइंस।
थैंक यू प्राची। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन नेगेटिव नोट। सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 150 पॉइंट्स। निफ्टी होल्ड्स 25,000 लेवल। Prime Minister Narendra Modi highlights success of country's digital public infrastructure, says this is the best time to invest, innovate and make in India. And United Kingdom's Prime Minister Keir Starmer hails India-UK free trade agreement as biggest deal signed by his country since leaving the European Union.
प्रमुख घरेलू सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 150 अंक से अधिक गिरा। निफ्टी 25,000 के स्तर के ऊपर बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता पर प्रकाश डाला। कहा ये निवेश, नवाचार और मेक इन इंडिया के लिए सबसे अच्छा समय है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद अपने देश का सबसे बड़ा समझौता बताया।
And before we begin the program, here's an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज घाटे का दौर रहा। शेयर बाजारों ने दिन की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की थी, लेकिन शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख पाए। हालांकि कारोबार के दौरान इनमें थोड़ी सी रिकवरी देखी गई। सेंसेक्स 153 अंक गिरकर 81,774 पर और निफ्टी 62 अंक गिरकर 25,046 पर बंद हुआ।
Benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty ended down today, snapping their four-day rising streak. The markets started the day on a positive note but failed to hold on to the initial gains, even as they experienced a brief recovery during intraday. The Sensex fell 153 points or 0.2% to close at 81,774 and Nifty dipped 62 points or 0.25% to settle at 25,046. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed with deeper cuts. The mid-cap index lost over 0.7% and the small-cap index declined over 0.4%.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों में गिरावट आई। सबसे ज्यादा पिछड़ने वाले शेयर्स में टाटा मोटर्स 2.4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.9% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में लगभग 1.7% की गिरावट दर्ज हुई। सबसे अधिक लाभ में रहने वाले शेयरों में टाइटन लगभग 4.4%, इन्फोसिस लगभग 2.7% और टीसीएस लगभग 1.8% बढ़ा।
Among the sectoral indices at the BSE, 17 out of 21 sectors logged losses. Among the laggards, realty dropped around 1.9%, power dipped 1.5% and auto slipped over 1.3%. Among the top gainers, focused IT advanced 1.7%, IT rose 1.5% and tech added over 1.3%.
बात करेंगे अब रुपए की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 88 रुपए और 79 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक, जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती को दिखाता है, दिन के कारोबार में 98.85 पर कारोबार कर रहा था।
दीपशिखा, 4 डेज ऑफ द मार्केट्स एंडिंग इन ग्रीन एंड टुडे वी सी अगेन बैक टू बीइंग इन रेड। व्हाट आर द रीजंस? व्हाट डू यू थिंक इट्स I mean, I'll just specifically ask you a couple of reasons. Is it because the Q2 earnings season is starting tomorrow and the market's a little bit cautious? Is it what's happening around the world? US government shutdown? What are the reasons?
Anupa, I think if you look at the last 4 days, today, probably it was a day of profit booking.
Right.
And I think it was expected that, you know, we've had 3 days of sort of very good performance and probably people would sort of want to book profits. Going forward, while there is a global overhang, which it has been there for a while, I think what's happening in the US definitely is having an impact, not just in Indian stock markets, but overseas as well. So that factor is always there. But of course, the earnings season is starting. Mm-hmm. So we've seen, you know, some companies have done very well today in the IT sector because the results, there's a lot of expectations.
TCS is going to be announcing the first of the lot.
Expectations yes. on the result. There are some other companies like in the jewelry sector, which have also done very well on the anticipation because it's a festive season, wedding season, and so on and so forth. So I think definitely the result results are also sort of there playing out on the sentiments.
You know, it's interesting because you're saying it's the festive season and normally during the festive season, we see auto sales pick up. But today we see that the auto sector has actually slipped down. So would you say that this is a temporary glitch? This maybe, you know, there could be other reasons or what is your view?
This thing is that if you look at the first quarter for auto sector, it wasn't that good. Mm-hmm. The sales have only begun to pick up, you know, post GST. There's been a pickup and that will probably show, in the next quarter or so. So I think that is where the concern mm-hmm. is in the investors. But auto sectors going forward is looking very attractive, especially because of the, the Diwali, the right. festive sales that we are seeing and the post-GST, you know, bump up, which the sectors witnessed.
Right. I want to, draw your attention to one more thing. The SEBI chairman, Tohin Kanta Pandey, today said that investor participation has surged to 13.4 crores or 134 million in 5 years. So what, volatility is the nature of the market. We will see markets are down today. They'll, probably come up tomorrow as well. But when you look at the numbers, when we look at the figure of 134 million investor participation in the last 5 years, how do you view this? What does it say about the overall stability and the maturity of the Indian markets and the investors?
Anupa, if you remember, a few years back, the market used to be so impacted by movement of foreign investment. So over the years, you've seen how domestic investors, retail, they have increased their participation in the market through mutual funds, even direct investments. The number of DMAT accounts has right. gone up in the country. There's been a lot of facilitation which has been done by the policymakers, by the government, by the regulator, and that has had its impact. People are more aware of the functioning of the stock markets. The awareness levels have gone up. There is ease of investment.
Yes.
So I think all those factors are there and definitely they've become a huge stakeholder in the stock markets right now.
Right.
दीपशिखा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मार्केट मंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत गिरा। जापान का निकेई सूचकांक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद 0.4% लुढ़क कर बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक लगभग 0.4% गिरा। इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार छुट्टियों के कारण बंद रहे। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज मुनाफे में कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 100 0.8% से अधिक, फ्रांस का कैक 40 0.7% और जर्मनी का डैक्स 0.6% के ऊपर कारोबार कर रहा था।
Moving on to the US markets, US stocks ended in negative territory yesterday amid the uncertainty over US shutdown. The tech-heavy Nasdaq Composite Index dropped nearly 0.7%, S&P 500 lost around 0.4%, snapping its 7-day gaining streak, while the Dow Jones Industrial Average dipped 0.2%. Deepshikha, very quick question. We see that this negative territory, is there in US stocks as well. Yesterday we saw that. So the US shutdown, the US government shutdown rather, it's already in its 8th day. Do you see this, if this continues, this kind of standoff continues between the Republicans and the Democrats, going to affect the markets and maybe spill over to the rest of the world?
We've seen this happen on a very regular basis, yes, in the US. So I guess, but this time I think both the sides seem to be sort of holding their ground, and there's a lot of acrimony there. So one is not seeing this resolving very quickly, and I think that is what is playing on the markets. But I guess I think there are efforts being made, mm-hmm, to sort of ensure that, you know, this eases probably going forward. If that happens, the US markets may look up.
Right.
Yeah. But of course, you know, if you look at the US economy as a whole, I think people are watching the data coming out very keenly.
Right. So, but that is also one of the, you know, things that is going to be affected because of this shutdown, because key data won't be coming out.
Exactly. Yeah. So hopefully both sides resolve this issue and things can get back to normal.
Right. Let's hope so.
Deepshikha, ruk karte hain agli khabar ki taraf. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि सभी के जीवन का अभिन्न अंग है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण के उद्घाटन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिस देश में कभी 2G की समस्या थी, वहां अब लगभग हर जिले में 5G कनेक्टिविटी है। श्री मोदी ने देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता को रेखांकित करते हुए ये कहा कि ये वक्त निवेश, नवाचार और मेक इन इंडिया के लिए सबसे अच्छा समय है।
इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश नवाचार और प्रगति के क्षेत्र में प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार और 5G बाजार है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हाल ही में देश में बना 4G स्टैक लॉन्च किया है, जो कि भारत के लिए प्रमुख उपलब्धियों में से एक है।
कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों के लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य, ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजिनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे।
श्रोताओं, चर्चा करेंगे इस खबर पर विस्तार से, मगर ब्रेक के उस पार। कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका अभिनंदन। हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि सभी के जीवन का अभिन्न अंग है। दीपशिखा जी, क्या कहेंगे इस पर?
बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने एकदम सही कहा है। अगर आप देखें, गांव देहात कहीं भी आप जाएं, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा, जिसके हाथ में फोन नहीं है। और वो फोन है, फोन के जरिए वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ई कॉमर्स कर रहा है, मतलब अपना सामान बेच सकता है, खरीद सकता है। तो गांव देहात में भी स्मार्टफोन जो है वो बहुत जा चुका है, अंदर अंदर तक पहुंच चुका है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने एक बैकबोन बना दिया है। 5G अब हमारे पास है, हम आगे उसमें जाने की बात कर रहे हैं। तो टेलीकॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा हुआ है उसी की वजह से डेटा जो है इतनी आसानी से लोगों को मिल रहा है, इतनी सस्ते दाम पर, सबसे दुनिया में सस्ता जो है वो डेटा भारत में है, तो इसी वजह से आप फोन में ये सब कर पा रहे हैं, ये सब सुविधाएं जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की या खरीदारी की, शॉपिंग की, वो सब आप कर पाते हैं
स्मार्टफोन में। मगर दीपशिखा जी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि हमें फ्री एक्सेस मिल रहा है डेटा का और बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि एक चाय के
पहले से भी कम दाम है,
कम दाम
जीविका,
बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में उसके क्या कोई नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अगर फ्री एक्सेस डेटा है तो शायद।
देखिए, हर चीज का दो पहलू होता है, लेकिन फिलहाल हमारा जो देश है, हम अगर देखें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत अलग लेवल पे काम हो रहा है, और नेगेटिव प्रभाव जो है आप हम अगर देखना चाहें तो कि लोग ज़्यादा समय बिता रहे हैं मोबाइल फोन पर क्योंकि डेटा इतना सस्ता है, प्रोडक्टिविटी का कितना लॉस हो रहा है, लेकिन वो जो आंकड़े हैं वो अभी बहुत छोटे हैं
जी,
और जो उनके फायदे हैं इस इजी एक्सेस के और सस्ते डेटा के वो बहुत ज्यादा हैं।
हम लाभ ज्यादा देख पा रहे हैं,
लाभ ज्यादा देख पा रहे हैं, बिल्कुल।
तो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, जो हम आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत किस तरीके से कदम बढ़ाता हुआ आपको नजर आ रहा है?
देखिए, भारत सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कोविड के दौरान, हम तब से देख रहे हैं, उसके पहले मेक इन इंडिया आया था। बहुत सारे क्षेत्र हैं, अगर हम फोन को ही देख लें, मोबाइल फोन्स को ही देख लें, बहुत हद तक हम आयात करते थे, अब हम निर्यात कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं। बहुत सारे और क्षेत्र हैं, जैसे कोविड के दौरान वैक्सीन्स के थे या पीपीई किट्स हमारे पास नहीं थे, हमने उसमें, हम उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसी तरह से जो आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएलआई स्कीम्स लाई गई, योजनाएं लाई गई, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम किया जा रहा है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम देखें तो बन रहे हैं, उस पर बहुत काम हो गया, चिप मैन्युफैक्चरिंग पे काम चालू हो गया है, तो बहुत फोकस तरीके से बहुत सारे क्षेत्रों में जहां पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है उन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है कि वहां हम आत्मनिर्भर बने।
ट्रांजैक्शन की भी अगर दुनिया की बात करें तो यूपीआई में अनुभव
जी, जरूर इस पर चर्चा करेंगे प्राची, पर इससे पहले समय है एक और ब्रेक का।
मार्केट मंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भरता पर दीपशिखा, और बात कर रहे थे कि हम यूपीआई में कितने, हम ट्रांजैक्शंस के स्केल पर हम कितने ज्यादा आत्मनिर्भर हुए हैं, बात हम कनेक्टिविटी की भी कर रहे थे।
प्राची, यूपीआई में तो हम देख रहे हैं कि भारत जो है, भारत का यूपीआई और देशों में भी जा रहा है, अभी हम और देशों में उसको लॉन्च कर रहे हैं, और ये फिनटेक का समिट चल रहा है मुंबई में इस समय, और वहां पर जो कल बात कही गई उसमें ये है कि अब आप अपने फिंगरप्रिंट और फेस के थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, और उसको आसान किया जा रहा है, तो यूपीआई
और उन्नत में किया जा रहा है,
बिल्कुल। तो यूपीआई में तो काफी काम हो गया है और आगे भी उसको बढ़ाया जा रहा है।
Let's move on to the next story. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated phase 1 of the Navi Mumbai International Airport, marking a major milestone in India's aviation infrastructure. The airport, built at a cost of 19,650 crore rupees, is expected to begin commercial operations by December 2025. With this, Mumbai joins the league of global cities such as London, New York and Tokyo that have more than one international airport. Addressing the gathering after the inauguration, the Prime Minister said the new airport reflects the vision of a Viksit Bharat and symbolizes the nation's progress, culture and technological capability. The Prime Minister of the United Kingdom, Sir Keir Starmer, who is on his first official visit to India, has described the India-UK Free Trade Agreement as the biggest deal the United Kingdom has signed since leaving the European Union. Addressing business leaders in Mumbai today on the first day of his visit to the city, the UK Prime Minister said that the trade partnership between India and the United Kingdom is of great importance. He also stated that this is the largest trade mission ever sent by the United Kingdom to India. The free trade agreement signed in July this year during Prime Minister Modi's visit to London is expected to boost bilateral trade between the two countries by £25.5 billion annually. Earlier today, Prime Minister Narendra Modi extended a warm welcome to his British counterpart. In a message on social media, he said he looks forward to their meeting tomorrow for working towards working together towards a stronger and more prosperous future for both nations. Deepshikha, at a time when, you know, the India-US trade talks are still mired, you know, they are still going on. How big a news is, like, you know, the Prime Minister of UK is here. He's saying that this is the biggest deal of by UK since, you know, since leaving the EU. How big a statement is this and the significance?
Absolutely. And I think, you know, if you saw the picture that they had posted on their social media platforms, mm-hmm. Largest ever delegation. I mean, the picture itself was like, you know, spoke of, you know, the enthusiasm which the British industry is sort of, there's built up of enthusiasm there. And there is keenness to work with India very closely in these in the area of trade. And for India also, you know, these trade agreements that it is now working towards, which UK has happened. It's in talk with the US, it's in talks with the European Union. Yes. These will obviously help its trade to grow and, you know, also help in diversification of its own basket.
Yes. And we'll move on to the next question. वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। इसकी शुरुआत 22 सितंबर से हुई थी। जीएसटी सुधार से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
जीएसटी में नए सुधार से उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। यह सुधार राज्य के पारंपरिक क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी जैसे प्रसिद्ध उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ ही कारीगरों के आजीविका को भी मजबूती मिली है। फिरोजाबाद, खुर्जा, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे शहरों में बने कांच, सिरेमिक और टेराकोटा उत्पादों पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा, जिससे इनकी मांग में बढ़ोतरी होगी। आगरा का प्रसिद्ध पेठा भी अब 5% जीएसटी श्रेणी में आने से सस्ता हो गया है, जिससे छोटे मिठाई कारोबारियों को मजबूती मिली है। नई दरों के साथ ये जीएसटी सुधार उपभोक्ताओं के लिए सामान सस्ता बनाने और कारीगरों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। समर्थ के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
And now let's look at the prices of the commodities. Global crude oil prices rose over 1% today. Brent crude was trading more than 1.2% up at $66.27 per barrel. And WTI crude was trading nearly 1.4% up at $62.59 per barrel when reports last came in. And let's quickly have, or rather, a detailed look at the prices of gold and silver as well. Gold prices notched a new record high today, crossing the $4,000 per ounce mark in international markets for the first time ever. The sharp rally in gold prices has been driven by rising demand for safe haven assets as investors seek protection from growing global economic uncertainty, including the US government shutdown and geopolitical tensions. The Indian bullion market also mirrored the surging trend. 24-carat gold was trading over 1.4% up at 1,22,910 rupees per 10 grams, and silver was trading more than 2.3% up at 1,49,000 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 1.4% की बढ़त के साथ 1,22,833 रुपए प्रति 10 ग्राम और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 2.1% से ज्यादा की मजबूती के साथ 1,48,898 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी।
Deepshikha, very quick question from you. We see, you know, gold prices have shot up by approximately 56% year to date. You know, what are the drivers for this? What is driving this rally?
Definitely uncertainty, central banks buying, and Anubha, gold has been the best performing asset of the financial year, your last financial year.
So I just also want to ask you one more thing. You know, that the way the prices are going up, gold prices, you know, it's becoming very unaffordable for the investors. So what are the options for those who are still lured by that, you know, glitter of the gold?
I think probably they should look at you know, exchange traded funds, or you know, maybe look at some other assets.
Digital gold, mutual funds.
Yes,
right.
दीपशिखा, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर।
Benchmark domestic indices end on negative note. Sensex drops over 150 points. Nifty holds 25,000 level. Prime Minister Narendra Modi highlights success of country's digital public infrastructure, says this is the best time to invest, innovate and make in India. And United Kingdom's Prime Minister Keir Starmer hails India-UK Free Trade Agreement as biggest deal signed by his country since leaving the European Union. And that's it in this edition of Market 1.0. We will be back at the same time tomorrow. Do remember to join us then. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।